ओम शांति। आज बाबा ने अपना परिचय दिया है। कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, क्यों करता हूं और कैसे करता हूं। कैसे सभी धर्म की आत्माओं का मैं पिता हूं, कैसे सभी धर्म की आत्माएं मुझे याद करती हैं, मानती हैं। बाबा ने सर्व आत्माओं के पिता के चित्र को भी याद किया है। दूसरा, बाबा ने कहा कि हरेक देवी देवता की ऐसी फोटो आती है। आजकल ये ज्यादा ट्रेंड चला है कि वो गणेश जी भी शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं, राम भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं। देखा है ना सभी ने वो फोटो, आजकल ये ज्यादा आते हैं फोटो। तो सतयुग में कोई पूजा करता नहीं है, देवताएं कोई पूजा करते नहीं हैं, वो स्वयं ही पूज्य है। लेकिन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनसे पढ़कर वो देवता बने, वो अंत तक भी रेस्पेक्ट चलाता है। इसलिए हर धर्म में भी यादगार है। बाबा ने कहा देवी देवता और कोई नहीं है, मनुष्य ही है। जैसे मनुष्य पढ़कर डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, वकील बनता, ऐसे मनुष्य ही पढ़कर देवता बनते हैं। दूसरा, आज विशेष बाबा ने प्रतिज्ञा याद करवाई है कि तुम्हें पक्का प्रतिज्ञा करना है और सारे विकारों को दान में दे देना है और सावधान किया है कि दान में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है। तो जब पवित्रता की बात आती है तो बाबा ने शंकराचार्य जी को याद किया कि उन्होंने भारत को थमाया, और जब प्रतिज्ञा की बात आती है, दान की बात आती है, तो बाबा याद करते राजा हरिश्चंद्र को कि अपनी सत्यता के कारण, अपनी प्रतिज्ञा के कारण, अपनी निष्ठा के कारण सब कुछ समर्पित कर दिया गुरु विश्वामित्र को, लेकिन वापस नहीं लिया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 17/7/2026, मीठे बच्चे ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है, यहां ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। तो भगवान आकर जहां सेवा करते हो तो वो भूमि कितनी महान हो जाती है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा अपने हरेक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, बाबा कहे मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। पांच विकारों का हम दान देते हैं, अंदर में डर रहना चाहिए। क्या डर रहना चाहिए? डर नहीं कहेंगे, अटेंशन कहेंगे, सावधानी कहेंगे कि अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो क्या होगा। दान देकर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। पहले तो बाबा ने गॉडली स्टूडेंट बनाया है, गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठो। ये बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। किसके पास आए हैं? हम आए हैं या बाबा हमारे पास आए हैं? टीचर खुद हमारे पास आया है। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। तो भारतवासी होना कितनी गौरव की बात है। भारत में ही आते हैं ना, ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। कहते नहीं, हमारा पैतृक गांव है, भले शहरों में रहेंगे लेकिन जो अपना पैतृक गांव होता है, ओरिजिनल गांव होता है, उसका बहुत अट्रैक्शन होता है। कोई जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहां मरता है तो उसको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहां का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उसको यहां ले आते हैं। बड़ा आदमी तो छोड़ो, आजकल कोई छोटा भी शरीर छोड़ता है तो होता है कि हमारे गांव में या हमारे नेटिव प्लेस में ही इसकी विधि होनी चाहिए। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। मनुष्यों की जन्मभूमि तो अलग अलग होगी लेकिन भगवान की जन्मभूमि एक ही है। ये भी जानते हो, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं उनके सामने अभी तुम बैठे हो। बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि मैं सभी धर्म का पिता हूं। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं, मनसंगे अश्वत्थ पत्थर को चूमते हैं, ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं, चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं कि हर देवता उस लिंग की पूजा करते हैं। शंकर और पार्वती दिखाएंगे तो भी आगे लिंग की पूजा करते हुए दिखाएंगे। वह है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो उनके सामने हम क्या करें, कल्प कल्प हाजिर होते हैं, किस लिए, शिक्षा लेने के लिए। हमारा सुप्रीम टीचर परम धाम से आता है 5000 साल में एक बार, तो हम भी उनके सामने पढ़ने के लिए हाजिर हो जाते हैं। भगवानी वाच्य है तो जरूर राजयोग सिखाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखलाया था और वो राजा रानी बने थे। कल्प पहले भी भगवान ने अपने बच्चों को पढ़ाया था और राजा बनाया था। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है, वो लोग राज्य पाते हैं कैसे पाते हैं, एक दूसरे पर लड़ाई करते हैं और जीतते हैं तो वो एरिया उनका हो जाता है, वो उस एरिया के मालिक बन जाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई है, लड़ाई से नहीं पाई है, कैसे पाई है, पढ़ाई से। लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई है, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। वो तो तब उनकी बुद्धि चले जब पहले ये समझे कि मनुष्य ही देवता बनते हैं, देवता और कोई नहीं है, मनुष्यों को ही देवता बनना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। सभी बाबा के सन्मुख बैठे हैं ना, कौन पढ़ा रहा है, बाबा हमको परम धाम से आकर सुबह सुबह पढ़ा रहे हैं, वही बाबा है। बाबा याद दिलाते हैं कल्प पहले वाला वही बाबा है, कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो है रचना। अभी बरोबर श्री कृष्ण अपना पद ले रहे हैं जो भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। श्री कृष्ण खुद ही अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ करके श्री कृष्ण बनेंगे, बन रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर इंजीनियर बनाते हैं, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। देवताएं भी मनुष्य हैं लेकिन वो दिव्य गुण वाले हैं, देवता हैं। मनुष्य हम भी हैं लेकिन पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और क्या करते हैं, दो काम करते हैं, एक तो पावन भी बनाते हैं और वर्षा भी देते हैं, मना राजा भी बनाते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में है ही राजा ही। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं, कितना प्यार से समझाते हैं ना अपने बच्चों को सुधारने के लिए, तो ये है पारलौकिक बाप, वो कितना प्यार से समझाते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे कैसे भी हैं, लेकिन मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कहकर मीठा बना देते हैं। जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस समय तुम जानते हो, ये अपना पार्ट बजाते हैं। जब हम सर्व संबंध का गायन करते हैं तो बाबा सर्व संबंध का भी पार्ट बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो तो क्या लिखते हो, बाबा के कमरे में लेटर लिखते हो, बाबा की कुटिया में लेटर लिखते हो, तो ऊपर में क्या लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, ऊपर एड्रेस लिखो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा तो लोग सोचेंगे ये क्या एड्रेस है। शुरू में जब पोस्ट आती थी तो ऊपर होता था बाप दादा माउंट आबू, अब बाप दादा आया माना ही ब्रह्मा कुमारीज की पोस्ट, उस समय ब्रह्मा कुमारीज नहीं लिखते थे, बाप दादा लिखते थे, वो पोस्टमैन आता था कहता ये बाप दादा की पोस्ट है, माना ब्रह्मा कुमारीज की है। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, ऐसा तो कभी सुना नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, सामने खड़े हैं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, दोनों हमारे सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, जो किया था अब फिर से कर रहे हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो दोनों को पढ़ाते हैं ना, कोई डॉक्टर बनाएगा बैरिस्टर बनाएगा तो कॉलेज में पढ़ने वाले कुमार भी होंगे तो कुमारियां भी होगी, दोनों होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी प्रवृत्ति मार्ग है तो दोनों को मैं पढ़ाता हूँ। राज विद्या में बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, फीमेल भी जज बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनती है, अभी तो समान अधिकार मिला हुआ है, हर फील्ड में बहनों को चांस मिलता है, मिलिट्री में भी बहनें होती हैं, ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो अलग है, आजकल तो वहां भी बहनें सन्यासी बनती हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता, तो उनका भी थैंक्स है जो उसने भारत को थमाया अपने पवित्रता के बल से। ये मूल है भारत को थमाने के लिए, भारत बहुत पवित्र था फिर अपवित्र बना है, अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई, लंका भी गई सोने की द्वारिका भी गई, तो वो सोना निकलेगा तो सही ना वापस। अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती, ये सब कहानियां बैठ लिखी है जिससे फायदा कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। सहज है ना याद, बस हम थोड़ी समय बाबा को याद करते हैं, अमृत वेले बैठ जाते हैं, सारी शक्तियां भर लेते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में हमारी प्रतिज्ञा याद दिलाएंगे, पहले खुद अपनी प्रतिज्ञा करते हैं। बाप कौन सी प्रतिज्ञा करते हैं बच्चों से, पहले बाबा की प्रतिज्ञा सुन लो फिर अपनी प्रतिज्ञा पक्की करेंगे। बाप प्रतिज्ञा करते हैं अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना, क्यों याद करते हैं भक्ति मार्ग में, क्यों याद करते हैं? हम याद करते हैं हमारे विकर्म विनाश हो और हमारा भविष्य अच्छा हो, राजाई पद हो। और भक्ति मार्ग वाले क्यों याद करते हैं, हम क्यों याद करते हैं कि बाबा हमारे सामने हैं, बाबा हमारे सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, वो हमारा टीचर है, हमारे सारे संबंध उसके साथ हैं। और भक्ति मार्ग वाले क्यों याद करते हैं कि हमको साक्षात्कार हो, हमारे सामने साक्षात खड़ा है, वो साक्षात्कार के लिए याद करते हैं। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी यह आश नहीं थी कि मनुष्य से देवता बने, गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करतन लागीवार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा, कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा आत्मा तो बोलते हैं, जब कोई समझाते हैं ना तो वो यही समझते हैं, हमारे में भी यही आत्मा का ही ज्ञान हमारे गुरु बताते हैं, हमारे धर्म में भी आत्मा का ही ज्ञान है। वो आत्मा का ज्ञान है लेकिन मैं ही आत्मा हूं ये रियलाइजेशन नहीं है। वो आत्मा शब्द आता है ना तो वही समझ लेते हैं कि हमारे में भी वही है। फिर लास्ट में कितना भी समझाओ वही बोल के बाहर निकलेंगे, हमारे में भी आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे निंदा हुआ है ये कोई नहीं जानते, ये अक्षर भी कभी कोई से सुने नहीं है। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तो ज्ञान का सागर है तो सच्चा ज्ञान वही आकर बताएंगे। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है, सतयुग में तो सब पुण्य आत्माएं हैं, यहाँ सब है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है, किसको पुण्य आत्मा कहेंगे? तो फिर अगर दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे तो किसको पुण्य आत्मा कहेंगे? पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में, जो पुण्य करके इतने श्रेष्ठ बने। यहां जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं, वहां तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में पुण्य आत्मा है लेकिन हमें दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां गरीब कोई होता ही नहीं। तुम वहां सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तान मान धन सब देहत के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहते हैं। जो पूरा बलिहार जाता है वो पुण्य आत्मा है। केवल थोड़ा धन दे दिया, थोड़े कपड़े दे दिए, कोई अनाज दे दिया, किसी को नौकरी दे दी, समझते यही बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन सच्चा पुण्य आत्मा वो जो बाबा के ऊपर पूरा बलिहार जाए। बाप कहते हैं, देखो बहुत अच्छी बात बताई, बाबा ने सवाल पूछा है। बाप कहते हैं, पहले मैं बलिहार जाता हूं व तुम? कौन जाते हो पहले बलिहार? कौन जाता है? हम जाते हैं या बाबा जाते हैं? हम जाते हैं फिर बाबा जाता है। लेकिन बाबा नहीं आते तो आप कैसे जाते? वो आया तब तो हम बलिहार गए ना। बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, तुम डायरेक्ट सुनते हो। बाबा बार बार रियलाइज करा रहे हैं, तुम डायरेक्ट सुन रहे हो, डायरेक्ट पढ़ रहे हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो। घर में रहते हो तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते हो, आजकल तो टीवी में सुनते हैं। अभी तो बाप के सन्मुख बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूं। यहां अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, बाप भी है टीचर भी है। बाप का बनने से वो शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है, 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले होंगे वही समझेंगे, जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो समझेंगे नहीं। तुम समझते हो, बरोबर हम 84 का चक्कर लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पहले यहां पवित्र बनेंगे फिर घर जाएंगे। पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बनते हैं जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर क्या है? योग अक्षर शास्त्रों का है तो राइट अक्षर कौन सा है? राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते हैं माँ में कल याद करो, और संग बुद्धि योग तोड़ो, अपने बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो, एक बाप से बुद्धि योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है वैसे निराकार शिव की जयंती है। जैसे बुद्ध आए तो उसका जन्मदिन मनाते हैं बुद्ध जयंती, क्राइस्ट के जन्मदिन को उसकी जयंती मनाते भी, आज क्राइस्ट का बर्थडे है। वैसे शिव बाबा जब आते हैं तो शिव जयंती मनाते हैं। वो है ऊंचते ऊंच हो गया, कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वो क्या आकर करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। अगले मास मनाएंगे ना जन्माष्टमी, श्री कृष्ण का जन्मदिन बहुत धामधूम से मनाते हैं, लेकिन वो कैसे बना, क्या करके गया, क्यों मनाते कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। अब इतना डीप कहां उन्हों के अंदर इतनी है पावर जो इतना डीप सोचेंगे कि उसको क्या बनाया, किसने बनाया। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहां विकार की बात नहीं होती, बच्चा शुद्ध रहता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन, बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। भाई को भाई से मिलता है, नहीं मिलता है। एक पिता के दो बच्चे हैं तो पिता से मिलेगा वर्षा, भाई को भाई से नहीं मिलता है। तो बाबा कहते हैं रचना को रचना से नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, तो श्री कृष्ण भी हमारा भाई हुआ ना, तो उससे कैसे मिलेगा, शिव बाबा से मिलेगा। ब्रदरहुड कहते हैं ना, बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक है, सब भाइयों का, हम सब आपस में भाई, देवताएं भी भाई, तो सबका सद्गति दाता एक बाप। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को सद्गति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखाते हैं, इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। ये लोग तो डॉक्टर बनेंगे तो यहीं क्लिनिक खोल देंगे, वकील बनेंगे यहीं कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन तुमको पढ़ाई का पद यहाँ नहीं पाना है। वो बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर पढ़ेंगे, लेकिन हम तो एक जन्म में पढ़कर दो युगों तक पद पाएंगे। तो कितनी हाईएस्ट पढ़ाई है वो अभी पाएंगे, अभी पद खत्म, दूसरा जन्म फिर बचपन से पढ़ना पड़ेगा। तुम जानते हो इस पढ़ाई से 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहां सतयुग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहां बीमारी ही नहीं होती, वहां तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो जहाँ बहुत सजाएं मिलती है। तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, इसलिए कहते हैं जब बच्चा बाहर पैदा होता है ना तो बाहर आके रोता है। क्यों रोता है? वहां वहां करता है कि वहां की वहां रही, गर्भ में प्रतिज्ञा किया वो वहां की वहां रही, बाहर आके खेल खत्म। सारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, वो धर्मराज से प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई। यहां तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, वो तो सजाएं भोगते हैं इसलिए धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं। और हम किससे प्रतिज्ञा करते हैं? शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। पांच विकार हम आपको दे देते हैं, सभी ने किए ना प्रतिज्ञा बाप से, सब यहां प्रतिज्ञा किए हुए ही बैठे हैं। ये भी बाप जानते हैं कि विकार कोई ऐसे फट से नहीं छूट जाएंगे, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है, उसको गुरु ने कहा दान में दो तो अपनी सत्यता के कारण, अपनी निष्ठा के कारण सब दान में दे दिया, अपने पत्नी और बच्चे भी दे दिए, सारा राज भाग दे दिया। लेकिन जब वो कंगाल भी बन गया तो वापस लेने का नहीं सोचा। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि पांच विकार झट से छूट जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये पांच विकार हैं बड़े दुश्मन, उसमें भी मुख्य एक है। कौन सा मुख्य है? लीडर कौन है? देहाभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। देहाभिमान मोटे रूप में तो चला जाता है, चलो अभिमान भी चला गया, लेकिन ये देह का कॉन्शियस जाना उसमें पुरुषार्थ होता है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु ये होता नहीं है। बाबा भी कहते हैं मैं रोज रोज कहता हूँ, घड़ी घड़ी कहता हूँ, परंतु होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है, पावरफुल है, स्ट्रांग है। देही अभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। पांच विकार दान में देना पड़े, इसमें टाइम लगता है। साजन बिगर सजनिया तो जा ना सके, पहले साजन को जाना है फिर सजनिया। पहले बाबा जाएगा आगे आगे, उसके पीछे पीछे हम सब जाएंगे, लेकिन बाबा भी हमारा इंतजार कर रहा है कि तुम तैयार हो जाओ तो मैं आगे चलूं। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूले होती है। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे, तूफान तो बहुत आएंगे। विकार का संकल्प आए परंतु मन में विकार का संकल्प आए परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप नहीं करना। लेकिन इसका एडवांटेज ये नहीं करना है, बाबा ने तो संकल्प में भी पवित्रता बोला है। पुरुषार्थ हमें वहां तक ले जाना है। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ तो सन्यासी भी देखेंगे। अभी कई जगह ऐसे होता है जब संत सम्मेलन होता है ना तो पवित्र युगलों को भी सामने बिठाते हैं। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत उच्च पद पाएंगे, तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। अगर पवित्र बन के दिखाया तो तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं, बल पवित्र भी रहे, बल पवित्र भी रहे, पवित्र रहे वो आधा हो गया, फिर आधा कैसे पूरा करना है। बल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए, पवित्रता प्लस योग। योग में घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्र रहते हैं सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे। परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है, बाबा सावधान करते रहते हैं कि दुश्मन आएगा, अलर्ट रहना। बाप समझाते हैं ये सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु पवित्र रहने की बहादुरी तो दिखाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तभी विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए, क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं, ये अनुभव पूछना चाहिए। याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे, ये बात ही बिल्कुल न्यारी है और नई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, ये भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है न कि कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है। क्या बातें लिख दी है, उनके बहुत चरित्र बताए हैं, वो सबको चरित्र पता है, पूरा श्री कृष्ण का उसके तो पूरी सीरियल ही बना दी है, कितने चरित्र बनाए हैं, ओखली से बांधा, माखन खाया, क्या क्या नहीं कहते हैं। ये कोई बातें है नहीं, ये भी उनकी ग्लानी करते हैं, इंसल्ट करते हैं। श्री कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था, श्री कृष्ण संपन्न आत्मा थी, उसके घर में कौन सी कमी थी जो दूसरों का चुराएगा, लेकिन वो समझते ये लीला है, उसकी चरित्र है। चंचलता करना ये भी एक अवगुण है ना, जो कृष्ण को चंचल दिखाते हैं तो बाबा कहते हैं चंचलता करना ये भी तो अवगुण है। श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी महिमा गाते हैं, क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम गाया जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, तो बोलो गुरु तो हमारा है नहीं। हम इनको ना तो गुरु मानते ना ईश्वर मानते, ब्रह्मा बाबा को गुरु भी नहीं मानते तो ईश्वर भी नहीं मानते। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना, साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परम पिता की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है ये तुम जानते हो बाप द्वारा। हमने भी कैसे जाना? बाप द्वारा। नॉलेज फुल तो बाप है ना, सुख शांति आनंद का सागर है, ये महिमा उनकी है। सब गाते हैं ना महिमा, बाबा सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, कितनी महिमा है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना, सिर्फ अपने पास तो बाप नहीं रखेगा, बच्चों को ही देगा। लौकिक में भी जो बाप का है वो बाप क्या करता है? बच्चों को ही देता है। तो ये सुप्रीम बाप भी सारा खजाना अपने पास रखकर क्या करेगा? बच्चों को ही देगा। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। कितनी प्यारी प्यारी बातें बाबा ने बताई। बाबा हर चीज बताता है, बड़ी रमणीकता से बताता है, सरल करके बताते हैं। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरी पॉइंट, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का वरदान बहुत सुंदर बताया बाबा ने, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। बाबा के हम बच्चे हैं वो कितना परसेंट बच्चे हैं वो नहीं है, बच्चे हैं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। वे कहते हैं ऐसा नहीं करो तो कहेंगे क्या करूं, मेरी नेचर है। ऐसे ये भी नेचर बन जाए, सहज योगी की भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे, कोई भी बात का परिस्थिति का न हमारे पर इफेक्ट हो और न डिफेक्ट रहे। स्लोगन देखो कितना मजेदार है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। जब सहन करने की बात आती है, सहन करना ही है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। यह व्यक्त इशारा इस महीने का टॉपिक चल रहा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। अच्छा, ओम शांति।